नमो महाभगन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णकर्मासिंह दीनबन्धो जगत्पते गोपेशन गौरंगी राधे बिंदावन मंदेन्द्रीवर वृंदारण्य निवासीमोदाधिकृतामयी स्वाम शरण प्रपन्ना चरण ्रजंतनुते समते चैतायनो विरहकारयाजन भाव से उसका विचार है दोनों में विरोधता मालूम होता है, उसी को थोड़ा सा जी गोस्वामी का क्या विचार है, हमारे और लोगों का क्या विचार है, थोड़ा सा संक्षेप में पड़ेगा। यद्यपि हम लोग इस विषय को अच्छी तरह से थोड़ा भी समझने में असमर्थ है, तभी एक प्रसंग आ गया है जिसने हम लोग सब अन्यथा ये बहुत कोटि का विचार है, साधारण भी विचार है, जो इस प्रकार के धर्म करते हैं उन लोगों के लिए इस जगत में उत्पत्ति का भाव सबसे निकृष्ट कोटि का है, किंतु शास्त्रों में जो लघुत्व और हेयत्व का वर्णन है अतः उसमें दो इत्यादि का भी विचार किया गया है, वो प्राकृत नायक और नायिका के और नायक प्राकृत भूमि के ऊपर में विचार किया। इस जगत में प्राकृत नायक और नायिका के संबंध में जो और लोगों ने वर्णन किया है उसमें ही इसका दोष देखा गया। जहां पर कृष्ण स्वयं ही सर्वस्व है वो अप्राकृत है, सच्चिदानंद भी है, उनकी जहां शक्तियां राधा इत्यादि भी है वो भी प्रकृति से अतीत है, वहां पर कोई भी चीज गोसावा नहीं हो सकता, कोई भी चीज वहां पर दो सब सूखी वहां पर संभावता नहीं है। साधकों में भी उत्सुक होकर के हो जाते हैं, उनमें ही कभी ये दोष सब नहीं रहते, तो वहां पर ये सब दोष नहीं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण स्वयं पति है, यहाँ भूपति है, यहाँ पर उनकी नायिकाएं अपराधित हैं, कृष्ण के समान वो रूप और कला स्वरूप उनकी है भी सच्चिदानंद नहीं है। वहां पर प्राकृत लोग अपने विचारों को वहां पर लगाते हैं, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी भक्त साधक अपने विचारों से मुक्त महापुरुषों का या अपने से उन्नत विचार वाले जो साधु हैं उन पर वो कसौटी न करे। क्या बोला समझ आ रहा है? वैष्णव लोग क्या कर रहे हैं, उन्नत वाले हैं और हमने निम्न कोटि के अधिकार में हम सब समय निम्न अधिकार के अनुसार में उन पर विचार करेंगे तो वो सब भूल हो। कृष्ण ने कहा जब मैं कभी खाता नहीं, मैं कभी स्त्रियों को देखता नहीं और हम देखते हैं कि वो स्त्रियों के सपने में देखते थे, राग किया त्याग किया तो कृष्ण की बात की हम ये देखें। भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, किंतु कृष्ण को हम झूठ बोलते हुए देखते हैं क्योंकि हम हमारी जैसी धारणा है झूठ कर सकते हैं उसी रूप में विचार करते हैं। जब युधिष्ठिर और कर्ण दुशासन दुर्योधन और ऐसे कलवा लेते जरा संभव ये कृष्ण को नहीं थे, ये भी कम विद्वान नहीं थे, कभी कृष्ण को नहीं समझते। मिट्टी खाई और कृष्ण ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान झूठ बोल दिए। अर्जुन को उन्होंने कहा मैंने सबको मार दिया है, तुमने समाज प्रभाव सबसे साथी, और ये कौन मारा गया, और वो मारा नहीं गया। उसके पिता को मरवाने के उद्देश्य से, द्रोण को मरवाने के उद्देश्य से ऐसा षड्यंत्र किया। हम तो देखेंगे अपने विचार से कि वो कृष्ण झूठ बोल रहा है। यदि कहोगे नहीं वो सत्य, तो हम अपने विचार से उनको देखेंगे ये झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों से कहला रहे हैं कि हम सत्य जोर जबरदस्त, क्योंकि हमारा आधार ही वही सत्य है। साधन करने का बल नहीं, अपराधिक प्राकृतिक झूठ सत्य और ये विचार करने का हमारा नहीं। ऐसे ही बुद्धि यदि हम अपने से उन्नत वाले किसी वैष्णव के प्रति हटाते हैं लगाते हैं तो ऐसा ही होता। हम देखते हैं ठीक अपने दृष्टि से, किंतु हम कहते हैं इससे ऐसा ये ठीक बोल रहे, ये ठीक नहीं चल रहा, किंतु वो ठीक चल रहा। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण भक्त जनस्य दृष्टि स्वभाव कई लोगों का अक्षत हो गई, न प्राकृत सत्वी न भक्त जनस्य सत्य। भक्तजनों का ये मत देखो जो हमसे उन्नत अधिकार के हैं। यदि प्राकृत भाव देखा, जैसे गंगा जल में कभी भी प्राकृत भाव नहीं होता है और हम उसमें कीचड़ और फेन देखते हैं जो पवित्र है, तो हम क्या वो झूठ देख रहे हैं? हमने देखा कि वो आदमी मर गया और वो कार्य में मरा नहीं, तो कौन सा ठीक है? हम अपने विचार से देखेंगे वो मर गया और वो कार्य में मरा नहीं, नारदी ने कहा कि मरा नहीं, तो सत्य से मरा नहीं। जीवात्मा कभी न मरती है न कभी जन्मती है, ये बात ठीक है। क्योंकि समझ में आए तब तो, इसलिए इन सब चीजों को विचार करने के लिए, भजन करने के लिए पहले उस प्लेटफॉर्म में आएगा सब कृपण से, अन्यथा समझिए अभी जो बतला रहे हैं ठीक से समझ नहीं आया, ये बात ठीक। तभी एक प्रसंग आया, हम उसको कह रहे हैं, हमने भी समझ लिया है ऐसी बात नहीं, तभी हम पढ़ रहे हैं। सुनिए, जब किसी जन्म में ऐसा सौभाग्य होगा भजन करने का तो उस प्लेटफॉर्म में आएंगे, या उसके लिए थोड़ा सा लोग ही उत्पन्न हो गया तो समझे निजी हिंदुओं का अनुशीलन वीरता होगा। इसी जहां अभी बल्कि भक्ति में ही रुचि नहीं आई और कहां ये रागानुगा का एकदम चुनाव था, तभी कुछ अनुशीलन जब चल रहा है तो थोड़ा सा चले। इसलिए शास्त्रों में जो औपपति और इन सब जो विचार किए गए हैं उपपति पति, इसके संबंध में जो लघुत्व जो दोष दिखलाया गया है वो जो प्राकृत नायिका और नायक के संबंध में है। चैतन्य महाप्रभु किसी स्त्री का नाम नहीं लेते, कभी किसी का दर्शन नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, ऐसा लिखा। यहाँ तक छोटे हरिदास को उन्होंने त्याग कर किस स्थिति में महाप्रभु का शरीर प्राकृत था या अप्राकृत? अप्राकृत था। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वैसा किया, नहीं तो दिन रात तो भीतर में और बाहर में तो उनका स्त्री भाव आराधा जी का भाव लेकर के आए, जिंदा क्या करते हैं स्वयं उसी का ही चिंतन करना, इसका तो उनकी कोई चिंता नहीं, उसी को आस्वादन करने के लिए और उसी चीज को देने के लिए है। जब कोई बात भी करते हैं तो उनके आप छोड़ करके कोई बात करेंगे या स्मरण करेंगे उनको छोड़ करके करेंगे नहीं करेंगे, तो भी
शिक्षा के लिए बैठा था।
इसे इतना दोष है, ये प्राकृत नायक और नायिका के संबंध में माँ प्रभु जी प्रसाद पाने जा रहे हैं, किसी के घर में उनका प्रसाद चारों कान से आया, किसी मेटी के घर से आया, उसकी बहन के घर माधवी माधवी देवी 84 वर्ष की है और महाप्रभु के भक्तों में प्रधान है, 3.5 में से वो एक। वहां पर लाना दोष नहीं है, किंतु उसमें जो दोष दृष्टि देख रहे हैं उन लोगों को शासन करने के लिए शिक्षा के लिए ऐसी बात है। ऐसे लोग ऐसा काम न कर, वहां पर दोष। इसलिए श्रद्धा सहित यदि इस विषय को अनुशीलन यदि किया जाए तो वो व्यक्ति अधिकारी होगा, सभी अधिकारी नहीं। जब शास्त्रों ने इसी तरह से विचार किया, किंतु मधुरस निर्यात उत्पादन के लिए जिनका अवतार है चैतन्य महाप्रभु जी, वो चैतन्य महाप्रभु जी भाव का साधन करना चाहते हैं, उसमें दो लक्ष्मी जी और गोपियों की बात चल रही है। चैतन्य चर्चा में
रथयात्रा प्रसंग
शिवाज स्वामी जी और संत दामोदर जी बैठे, शिवाज पंडित जी बगल बजाते हुए और खूब हंस करके लक्ष्मी की बहुत प्रशंसा करते। आज उन्होंने गोपियों को पीट करके दुरुस्त कर दिया और उनको पकड़ करके राधा जी के लक्ष्मी जी के चरणों में
भिजा दिया,
बड़े आनंद। संत दामोदर जी भी बड़े आज आनंदित हो रहे हैं गोपियों का उपकर्ष देखकर, और महाप्रभु जी उनसे पूछ रहे हैं ये लक्ष्मी पतिव्रता है, किंतु होने पर भी ये राक्षसस्थली को दर्शन करने की इनकी क्यों अभिलाषा आता होती, तो इसे उनका पापी भक्त धर्म नष्ट होगा कि नहीं होगा। केवल 1-2-4 आदमी कहेंगे ये नहीं और बाकी सब कहेंगे जो होता है, क्योंकि उसी अधिकार में, इसलिए शिवाज जी भी उसी अधिकार में अभी बढ़े। अधिकार तो उनका उन्नत है, किंतु अभी दिखला रहे हैं शिक्षा देने के लिए। स्वरूप दामोदर जी हैं राधा जी के पक्ष में, उन्होंने कार्य ऐसा नहीं होता, सफलता दोनों एक कृष्ण और श्री
नारायण
एक ही
सर कृष्ण स्वरूप
रस के द्वारा उत्कृष्ट होता है,
कृष्ण रूप में
रस की ऐसी स्थिति है जिसमें मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई दोष की बात नहीं। उन्होंने कहा गोपियां कृष्ण मधुर बंसी बजाए और सब गोपियां अपने पशुओं को छोड़ करके चले और कृष्ण ने सबको विदा कर रहे हैं कि अब घर में लौट या राक्षस स्थली रास हुआ और सब गोपियां एकत्रित, उसमें कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते और पीछे से राधा जी के साथ में प्रकट हो। सब दामोदर जी ने कहा देखो सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के साथ में आए, किया राधा जी सबसे श्रेष्ठ। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं अभी बात सिद्ध नहीं, वो तो चोरी से गए, हो सकता है कि किसी को अधिक प्यार करने में चंद्रावली और ललिता भी साथ, तो इनसे चोरी करके सब उनसे जाकर के मिले हैं, इसलिए सशस्त्र स्थापन नहीं, उसमें सभी हो सकती है कृष्ण की प्यार। यदि सबके सामने प्रत्यक्ष स्वरूप में यदि सब गोपियों को छोड़ करके राधा जी के साथ में जाए
और उनकी सेवा करें, तब हम समझेंगे कि राधा जी उनकी सबसे अधिक सेवा। तब उन्होंने बासंती राग का वर्णन और उसमें दिखलाया बासंती का राग हो रहा था गोवर्धन में, और वहां पर राधा जी ने थोड़ा सा मांग किया और वहां पर सब गोपियों के समक्ष सामने राधा जी को ले लिया कब, और वहां से अंतर्ध्यान हो जाता सब गोपियों को छोड़कर के पीछे इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, प्रमाणित होता है कि राधा जी सबसे अधिक। और वो सब पतियों को तो वो छोड़ करके आई है, और इधर में सब गोपियों को भी छोड़ करके कृष्ण उनको लेकर के जाए। यहाँ पर उपपति का भाव यहाँ पर दिख रहा है, और उसमें भी राधा जी का भाव सर्वोत्तम ये दिख रहा है। यहाँ पर कृष्ण ही स्वयं परब्रह्म है, सच्चिदानंद दर्शन है, वो उनके मूल उद्गम भी है, उनकी वो शक्ति भी है, और वही उनसे उसी रूप में स्वकीय भाव में भी परकीय भाव में भी कभी बंधु बन करके सखा बन करके कभी पिता माता इत्यादि पुत्र को करके सभी रसों का आस्वादन करते हैं। तो एक यही भाव क्यों छूट जाए तो अपूर्ण हो जाएगा, है समझ में कि नहीं। यदि उत्पत्ति का भाव छूट जाता तो उसमें अपूर्ण हो जाता द्वारा, इसलिए वो भी क्यों न पूर्ण हो। इसलिए संपूर्ण जो कुछ भाव है, कोई भी जो चिंता कर सकता है, उस चिंता के अतिरिक्त ही जो कुछ है सब कृष्ण में और जीवन छोटा पूर्ण है। इस संबंध में अधिकार के अनुभव जैसे हम लोगों का अधिकार है, उस समय में वो स्वामी जी मुझे बतला रहे हैं साधारण इस प्राकृत उपपति का जो भाव है, अरे छोड़ दो उनको हवा लगेगी, कभी भी लागू नहीं होगा। कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी का उपपति नहीं हो सकते, वो तो स्त्रियों की बात क्या। कृष्ण जितने पुरुष हैं स्त्री हैं, लड़के हैं लड़का हैं, वृक्ष हैं लता हैं गुल्म हैं, जहां तक जो प्राणी हैं सबके पति हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके कृष्ण पति नहीं। पति माने पालन पोषण करना, और तो माने
प्राण पर
रक्षा करना, प्राण तो सबके वो यथार्थ पुरुष में पति है, यही भाव ठीक है। किसी के भी उपपति नहीं है। जैसे एक बार गुरु जी बतला रहे हैं, द्रौपदी जी सभा में खड़ी हैं और शिर हरण हो रहा है, कृष्ण कपड़े बन गए और उनके शरीर में लपट गए सारे शरीर, और लोगों ने कहा कि इसकी लज्जा की रह गई, रक्षा हो गई। अच्छा, सचमुच में उनकी लज्जा रही कि गई? क्या हुआ? दूसरों की दृष्टि से तो उनकी लज्जा बची गई, उनके अंग नहीं दिखे, किंतु कृष्ण तो उनके अंगों में ऊपर से नीचे तक, तो उनका सत्यत्व रहा कहाँ? यदि कृष्ण को परपुरुष मान लिया जाए नहीं, कृष्ण तो उनके अंतर हैं, बाहर हैं, भीतर हैं, कोई देखे न देखे। क्या एक पिता से भी कृष्ण कम हो गए? जो अपनी बच्ची को, छोटी सी है, उसने चट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, वो उसको धो देते हैं सब अंगों को, तो कृष्ण उससे भी कम हो गए? इसलिए कृष्ण सबके ही पति हैं, ऐसा ही ये भी सुना चाहिए जी गोस्वामी भी कर, कोई माने और न माने। इसी दृष्टि से वो श्लोक बतलाया गया है, तमेव माता पिता तमेव 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 बंधु सखा तमेव
तमेव विद्या
गविणं तमेव
तमेव सर्वममेव देव।
इसीलिए कहा, जहाँ कहीं भी श्लोक की वंदना की गई है, साधारण लोगों की दृष्टि के अनुसार में अधिकारियों को निर्णय करके, जिसका कोई बुद्धि विवेक नहीं है, उन सब लोगों के लिए ऐसे कर दिए कृष्ण ही सदस्य, उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण में ये सब भाव पति और उपपति और ये सब मत आरोप करो, कृष्ण ही सब जीव मात्र के पति हैं। नित्य लीला में परकीय भाव नहीं होता, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। कृष्ण की दो लीला है, एक लीला है प्रकट और एक है अप्रकट। एक जगत में जितने दिनों के लिए वो प्रकट होती है, ब्रज में वो लीला केवल 3-4 वर्ष के लिए प्रकट होती है, बस इस जगत में। ब्रज में कितने दिन? 8 वर्ष से करीब 10 वर्ष तक, बस दो ही वर्ष तक। कृष्ण 10 वर्ष के बाद में यहाँ पर चले आते हैं, उस समय उनको कहा जाता है कि 11, 11.5, 12 वर्ष के वो हो गए, किंतु उसकी उम्र कृष्ण की जब आए तो 10 वर्ष की। खाते पीते मक्खन और लड्डू खाते थे मिश्री, बहुत जल्दी थोड़ी उम्र में ही वो अधिक मोटे दिखते थे। कहते हैं कि प्रकट लीला में प्रक्रिया नहीं है, कौन कह रहा है, किसके लिए कर रहे हैं?
अनधिकारी लोगों के
लिए, छोटे छोटे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उनका भी छात्र ही होने लायक नहीं, वहाँ पर तो कुछ छात्र से जिसको बतला रहे हैं, करें तबे वहाँ पर जो माया के द्वारा रस का पोषण करने के लिए प्रकट लीला में उपपत्ति का भाव प्रतीति मात्र होता है। प्रतीति माने दिखता है किंतु है नहीं, जगत में दिखा, बहेलिए ने बाण मारा और कृष्ण के पैरों में लगा और वहां से रक्त स्राव हुआ और कृष्ण उसी से परलोक धाम को चले गए, शरीर को छोड़ करके गए और शरीर को जला दिया। लोग ऐसा कहते हैं, उस स्थान को ऐसा दिखला, किंतु ब्रह्मा और शंकर ने देखा कृष्ण उसी शरीर से ही तेजमय शरीर से अप्रकट धाम में वो पहुंचे और लोग उनकी वंदना करने, देवताओं में तो उनकी गति भी लक्ष्य नहीं थी, ब्रह्मा और शंकर जैसे लोगों ने केवल देखा कृष्ण सशरीर ही यहाँ पर जा रहे हैं। और साधारण लोगों ने देखा क्या, पैर में उसका बाण लगा हुआ है, वो शरीर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा सत्य है, कौन सा झूठ है, या दोनों सत्य है दोनों झूठ है, न क्या है? हम लोगों के लिए वो पहला वाला जो था, जो बाण लगा
पड़ा हुआ
और वो दिखाई जो पड़ा, वही सत्य है। हम लोग भी उस समय होते ना तो उसको देख करके ऐसा ही समझते, किंतु कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड को क्षण मात्र में भी प्रस्तुत करने वाले, निर्माण करने वाले कृष्ण के लिए एक अपने जैसा और शरीर निकाल करके और दिखला देना, ये कोई बड़ी भारी बात, कोई भी बात नहीं। उनकी जोग माया ने कंस को छका दिया ना, उसको पटका देवी को और वो अष्टभुजा होकर के ऊपर में चली कही कही तुम्हारे मारने वाला नत्र जन्म दे दिया। तो वैसे ही जोग माया के द्वारा वो जगत के साधारणों को थक गए थे। उन्होंने देखा अपने अधिकार के अनुसार में देखा और उन्होंने सत्य ही माना, किंतु वह बात थी एकदम संपूर्ण गलत। कृष्ण से शरीर ही वहां गए, बाण इत्यादि से उनका कोई भी संपर्क नहीं था, श्रीमद भागवत इत्यादि में नहीं लिखा गया। महाभारत में कहीं कहीं ऐसा माने ऐसा दिखलाया गया है, कहा नहीं गया, दिखलाता है, उसके कहने से ऐसा दिखता है। इसीलिए कहा गया श्रीमद भागवतम पुराण अमलम पुराण, और सब में पुराण और अधिकारियों के अनुसार में ऐसा लिखा गया है कि धीरे धीरे समझ समझ करके धीरे 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 बढ़ेंगे, और सत्संग में जब उनकी बुद्धि होगी तो वो इन चीजों को समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। बहुत से लोगों को यह कुछ गलत धारणा लोगों की हो जाती है। गोलोक धाम में राधा जी में और तुलसी जी में परस्पर अभिसंपात हुआ, इसीलिए वो शंखचूड की स्त्री बन करके आए और कृष्ण वहां पर इस रूप में आए, और नहीं उसको पीछे से हुआ, और सुबल आए शंखचूड होकर जलंधर। ये सब चीजें हैं हम जैसे मूर्ख लोगों को थोड़ा सा बतलाने के लिए, यथार्थ में ऐसा फैक्ट नहीं है। अपराधिक जगत में ये सब चीज कुछ नहीं है, किंतु हम लोगों की बुद्धि मोटी होने के कारण ऐसा समझा जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी उनको वो बतला रहे हैं कि ये जो गोपियों के साथ में गोपियों का विवाह हुआ था ब्रज में, किसके साथ, उनके पतियों के साथ में, ये माया ने भ्रम उत्पन्न किया। यथार्थ में वो कोई शादी नहीं हुई उनकी, कृष्ण के साथ ही उनकी शादी है, या जो कुछ है उनकी स्वकियां हैं। वो माया प्रत्यायित भाव, माया प्रत्यायित माने माया ने न होने पर भी एक ऐसा भाव दिखला करके और उनके मन में ऐसा अभिमान पैदा कर दिया। ब्रह्म मोहन में भी माइक लीला, यदि कहो जैसे भगवान की लीलाओं में माइक लीला आ जाती है तो क्यों नहीं आ जाती है। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म मोहन में माया ने मोहन कर दिया ना, किसको,
ब्रह्मा जी
लड़कों को, लड़कों को मोहित कर दिया, कृष्ण को भी आच्छादित कर दिया, और उन्होंने देखा कि हमारे सब सखाएं न जाने कहां चले गए, और कृष्ण मुग्ध हो करके देख रहे हैं तो सुन रहे हैं। मुख सचमुच में सूख गया, ऐसे हृदय कांपने लग गया, मुख मलिन हो गया, प्यास से सूख गया उनका, देखा जी अरे बछड़े तो बछड़े गए और इधर आया तो सखा लोग भी कहां चले गए, ये कैसे हुआ। माया ने ऐसा कर दिखाया, यथार्थ में न बच्चों को कोई ले गया, न सखाओं को कोई ले गया, न कृष्ण को कोई मोह हुआ, ये माया के द्वारा ऐसा हुआ। इसलिए मध्वाचार्य ने इस प्रसंग को ही, ब्रह्मा मोहन गुरु है ना, इसलिए इस प्रसंग को कहा जाए ये प्रकाशित है, ये है ही नहीं। दो अध्याय दो अध्याय को प्रक्षिप्त बतला दिया, किंतु हमारे चेतन महाप्रभु जी ने, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर और जीव गोस्वामी ने कहा नहीं ये ठीक है। क्यों ठीक है, कृष्ण जो कोई भी संकल्प करते हैं वो सब संकल्प ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अकामयत यह जगत हो गया, सऐक्यता उसने इच्छा की और ये जगत हो गया, तो ये जगत झूठ नहीं है, सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा ये प्रकटित हुआ है। उसी प्रकार से वो जो ब्रह्म मोहन की लीला है उसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, शिक्षाएं हैं, ये कभी असत्य हो सकती है? असत्य में वो ठीक। दो माया, एक महामाया जोग माया, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते, वहां पर एक ही माया काल लिखा हुआ है सब। किंतु ब्रह्मा जी को और साधारण लोगों को जो मोहित किया वो महामाया, और कृष्ण को जो मुग्ध किया वो जोग माया। ये माया तो दो है नहीं, उसके फंक्शन दो हैं। उसी तरह से यहाँ पर जीव गोस्वामी का है, अशुद्ध जैसे लोगों के लिए, विवेकहीन साधारण लोगों को उन्होंने माया के द्वारा मुग्ध हो करके वो दिखलाया क्या, ये इनका विवाह हो रहा है। किनका? गोपियों का विवाह हो रहा है। पति लोग भी समझ रहे हैं कि हमारा विवाह हो रहा है। हुआ क्या, असल गोपियां तो ठीक थी, वो विवाह स्थल में नहीं आई, उनकी प्रतिमूर्ति जोगमाया ने कराया और करा करके उनका विवाह रचा। और जी गोस्वामी तो कह रहे हैं ये भी नहीं हुआ, जैसे नारद जी को वो कल परसों जी कथा कर रहा था, वो एक नगरी मिली, राजा मिले, सुंदर हो रहा था और उसमें हाथ देखा लड़की का, फिर विवाह करने के लिए उतावले हो गए। ये सब एकदम झूठ माया में कुछ हुआ ही नहीं और ऐसा दिखाई पड़ गया। अभी हमारा बंधन नहीं है, अभी जो हम लोग माया के मन में, गुरु जी कहते थे कि नहीं बंधन में कोई है ही नहीं, यही तो माया है, बंधन ही। और हम समझ रहे हैं कि बंधन, जीव यदि चेतन है और नित्य चेतन है तो माया उसको बांध करके उसकी क्रिया को लुप्त कर देगी, ये तो कभी संभव पर नहीं। तो जीव तो भगवान की सेवा कर रहा है, मुक्त पुरुष इसीलिए देखते हैं कि ये भगवान की सब सेवा कर रहा है। जीव कभी भी बद्ध नहीं होता, किंतु हम उसको उपलब्धि कर रहे हैं। ये क्या चीज है? यही माया मरीचिका है, नहीं हुआ तभी ऐसा दिखता है, ये भी भगवान के एक लीला है। ये महामाया के द्वारा ये सब ऐसी लीलाओं को करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों का वहां पर उनके पास में कोई उत्तर नहीं, माने उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, क्यों करते हैं वो ठीक करते हैं,
क्यों नहीं करते हैं?
इसलिए कहते हैं कि माया के द्वारा ऐसा हुआ। मान लिया, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न होता है उसका भी समाधान करते हैं। अच्छा, गोपियों की प्रतिमूर्तियों से गोपों का विवाह हुआ, वो समझ रहे हैं कि मेरी स्त्री है ना, ये बात तो ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं। किंतु असल में जो गोपियां थी वो कम इनके घरों में आकर के वो समझती हैं कि हमारे ये पति हैं, और उन घरों से वो रास्ते में जाती हैं। इसका उत्तर क्या होगा, आया कुछ समझ में कि नहीं आया? आया क्या कहा, क्या बोल रहा हूँ, उनको तो समझते हैं हमारा विवाह नहीं हुआ, ये तो सीधी सी बात। उनकी मूर्ति बना करके कोई और शादी करा दे और उनको मालूम नहीं जो मेरी शादी हुई, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसी के लिए कहते हैं कि वो योग माया के द्वारा उनमें भी ये अभिमान दे दिया गया, किंतु वो अभिमान दिया गया कुछ समय के लिए, केवल रस की सिद्धि के लिए ही उन्होंने किया। अब ये समझ में नहीं आएगा अभी, तब इतना भी तुम लोग थोड़ा सा जान लो, भजन करते 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 करते, चिंतन करते करते, स्मरण के द्वारा तब धीरे धीरे ये समझ में कुछ कुछ आएगा। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा भेद एक आभास के रूप में समझ, हम लोगों के अंदर में ये प्रश्न ही नहीं आएगा, किंतु संसारिक लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा। जथा सिंगो ही मनमथो उद्भेद सदा गमन हेतु, ये कह रहे हैं सिंगो ही सिंगार रस, श्रृंगार माने क्या होता है? श्रृंगार, श्रृंग से श्रृंगार। श्रृंग किसको कहते हैं? पर्वतों की चोटी का नाम। जितने रस हैं ये पहाड़ हैं, और उनकी चोटी क्या है? ये मधुर है, इसलिए इसको श्रृंगार कहते हैं। श्रृंग का भी श्रृंग है ये, इसलिए इसको। और श्रृंगार माने होता है सूची, सूची माने पवित्र, पवित्र माने इसको कहते हैं। साधारण चीज नहीं है, इसको जिनकी बुद्धि नहीं है, भजन नहीं है, जो साधु संग नहीं करते, समझने में अपारक। एक पति अपने स्त्री से को अपने घर में रहता है, एक तरह से रहता है। एक दिन हमने देखा जो यही मथुरा का ही दंपति, एक लड़का लड़की, माने पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं। लड़की बैग यहाँ पर खुला दिया, जैसे कॉलेज में जाते हैं लड़के ना, ठीक उस रूप में। मालूम नहीं कि पति पत्नी ने, किंतु हाँ प्रेमी प्रेम का जैसे मालूम पड़ रहा है। दोनों ने आकर के हमारे चरण छुए। अरे भाई, मैं तो तुम लोगों को पहचान ही नहीं सका, कहाँ जा रहे हो? आगरा जा रहे हैं। किस लिए? एक काम से जा रहे। ठीक ऐसे ही वहां पर रस के निर्यास के लिए उन्नतम जोग माया ने ऐसा किया, इसीलिए यहां पर कर रहे हैं। ये जोग माया के प्रभाव से नहीं होने पर भी ये ऐसा हुआ नहीं, संघटित विवाह शादी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही जोग माया ने ये सब घटा दिया। तो वो जो प्रश्न किया ने, तो उनके हृदय में ऐसा क्यों हुआ? तो यही जोग माया का कार्य। अघटन घटन पटियसी शक्ति है वो कृष्ण की, इसलिए किसी विशेष कारण से उनके हृदय में भी ये प्रश्न और भावना बना दिया, जो कि अपनी स्त्री में भाव नहीं होता, वो भावना के अनुसार में प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसा। ये पहला उनका पॉइंट। दूसरा, तो अलंकार शास्त्रों में भी उपपत्ति की निंदा की जाती है। इसलिए हमारे ये अलंकार शास्त्र भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि में और दूसरे शास्त्रों में भी जब उपपत्ति की निंदा देखी जाती है, तो कृष्ण में उपपत्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। ये जैसे भी है शब्द ही खराब है, इसलिए उपपत्ति का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का उपपत्ति का भाव नहीं, बल्कि पति का भाव ही था। दूसरी बात, कृष्ण ने स्वयं कहा था तुम अपने घरों में लौट जाओ। स्त्रियों के लिए पति लंगड़ा दूल्हा और समस्त साधनों से हीन भी हो, जैसा भी हो, काला कलूठा जो कोई भी हो, पालन करने में भी असमर्थ हो, कोढ़ी इत्यादि भी हो, तभी स्त्रियों के लिए वो हाथब्द नहीं है, अर्थात सोने योग्य नहीं है। उनकी सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। ये विचार यदि कृष्ण स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं, तो वो उपपति होकर के उनकी कैसे सेवा ग्रहण कर सकते हैं? इसलिए ये कभी भी संभव नहीं। इसलिए उन्होंने कहा अस्वर्गम और यथस्करम च फल्गु कृष्णम भयावह युगक्षितम च सर्वत्र होपपत्तम कुलस्त्रिय। कुल स्त्रियों के लिए उपपति का भाव स्वर्ग से भ्रष्ट करा देने वाला अत्यंत तुच्छ अत्यंत भयानक फल देने वाला महापाप और सर्वत्र अत्यंत निंदनीय है लोक में और परलोक में। तो भला कृष्ण इस ऐसे संबंध को क्यों ग्रहण कर सकते हैं गोपियों के लिए, इसलिए ये सब गोपियां कृष्ण की स्त्रियां थी, कृष्ण उनके स्वयं पति इसलिए। और यदि कुछ देखा जाता है वो जोग माया के द्वारा नहीं होने पर भी उसकी कल्पना की गई, यथार्थ में उनके पति। और हम आगे कहीं आगे
नमो महाद्रेमस्वतावंशते गोपेश गोपिका आदिता सुखर सदा ज्यादा निपत्पो निकंदवती अस्मुख।